संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारी ध्यान में। समय सार पर प्रवचन सार परमागम की 17वीं और 18वीं गाथा चल रही है। 16वीं गाथा स्वयंभू की गाथा कहलाती है और स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है कि जो स्वयं से सब कुछ हो, जो स्वयं से सब कुछ बना हो। लोक में अपन कहते हैं ना कि ये तो स्वयंभू नेता है, माने इन्हें किसी ने नेता बनाया नहीं है, ये किसी चुनाव में लड़कर खड़े नहीं हुए हैं, किसी ने इन्हें राज तिलक नहीं किया है, लेकिन ये अपने आप में इतने महान हैं कि जहां खड़े हो जाएं तो चारों ओर से लोग घेर लेते हैं, जय के नारे लगाने लगते हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि ये कौन है तो कहते तू नहीं जानता कि तू कौन है। जो ये नहीं जानता कि ये कौन है, माने ये इतने अधिक सर्वजन के द्वारा जाने हुए हैं कि इन्हें कुछ होने की जरूरत नहीं है। इनकी उपस्थिति होने के लिए ये किसी पद के कारण यहां नहीं आए हैं। कैसा ये मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इसलिए हमने यहां बुलाया है। ये सच्ची बात है कि यदि वो नहीं होते प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो शायद हम उन्हें नहीं बुलाते, यानी वो पद की वजह से आए हैं, उन्हें कुछ होने की जरूरत है, कहीं भी जाने के लिए, आने के लिए, सम्मान पाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि उन्हें कुछ होने की जरूरत नहीं है। अशोक जी, कांजी स्वामी कौन थे? अध्यक्ष थे कहीं के, मंत्री थे, क्या थे, मुनि थे, आचार्य थे, पंडित थे, गृहस्थ थे, कि उन्हें होने के लिए कुछ होने की जरूरत नहीं है। पर कांजी स्वामी थे, जो स्वयं से ही सब कुछ हो, जिसे होने के लिए किसी पदमद की अपेक्षा नहीं हो, कोई दूसरा उसे स्वीकार करे इसकी अपेक्षा नहीं हो। अपने देश में गांधी जी थे ना, किसी पद पर नहीं थे, कहते कांग्रेस के 54 सदस्य नहीं थे, लेकिन सारी कांग्रेस उनके इशारे पर चलती थी, और जब तक उनके इशारे पर चलती रही हिंदुस्तान में राज किया। सैकड़ों वर्ष बाद तक, महात्मा गांधी के जाने के बाद, सिर्फ उनके इशारों पर चलने के कारण सैकड़ों वर्ष तक राजकीय गद्दी पर बैठी रही, ये वो हैं। तो हमारे कहते हैं अरहंत भगवान 16वीं गाथा में कि 16 आना सत्य है। पुराने जमाने में 1 रुपए में 16 आना हुआ करते थे ना, जब 16 आने की बात हम करते थे तो 100% उसका अर्थ होता था, है ना, 100% शुद्ध। ऐसा ये स्वयंभू हमारे भगवान क्या हैं, अरहंत भगवान क्या हैं, कि स्वयंभू हैं। कि ये स्वयंभू कैसे बने, कि स्वयं से बने, स्वयंभू बनने के कर्ता भी यही हैं, कर्म भी यही हैं, करण भी यही हैं, संप्रदान भी यही हैं, अपादान भी यही हैं, और अधिकरण भी यही हैं, सब कुछ यही हैं। लोक में हम देखते हैं कि जब एक काम होता है, जरा सा काम होता है, छोटा सा फंक्शन किया अपन ने एक दिन का, तो इतनी बड़ी कमेटी बन जाती है, उसका लेटर हेड छपता है तो एक पेज पे तो पदाधिकारियों के नाम ही नहीं बनते हैं पाटनी जी, क्यों कि काम क्या होना है कि महाराज आए हैं और उनका प्रवचन होगा, यही काम है ना। बोलो कि महाराज की व्यवस्था, महाराज की व्यवस्था क्या होना है, सैकड़ों लोग अपने आप चौका लगाएंगे, महाराज निकलेंगे तो नब्दा भक्ति पूर्वक उन्हें जमाएंगे, तुम्हें क्या करना उसमें, तुम्हें क्या व्यवस्था करना है, बस थोड़े आगे पीछे दौड़कर ये बताना है कि मैं कुछ हूं इसमें, के व्यवस्था मैंने की है। अरे किसी की हुई व्यवस्था में मुनिराज आहार नहीं करते, क्योंकि उसको उद्दिष्ट आहार बोलते हैं, वे कहते हमारे उद्देश्य से बनाओगे तो हम नहीं आएंगे, हमें और तुम्हें दोनों को दोष लगेगा। तुम उसका व्यवस्थापक है कि जिसके व्यवस्था में यदि वे आहार करें तो लेने वाला और देने वाला दोनों ही दोषी कहलाते हैं, कैसा धर्म है ये देखो तो है? और हम उस व्यवस्था के इतने लंबे लंबे नीचे नीचे से, और फिर कभी कभी इस पर वो झगड़ा हो जाता है कि नीचे नाम किसका ऊपर नाम किसका, और इस चक्कर में फिर निपटाना पड़ता है, कभी इतनी व्यक्ति है ना मालूम क्या क्या होता है, मुकदमे चलते हैं है? हम समाज के कल्याण के लिए आए हैं ना, सेवा करने की भावना से आए थे, सेवा करने के लिए गांधी जी को क्या जरूरत थी, देश का प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत थी, किसी पद की जरूरत थी है? और सारा देश उनकी आज्ञा मानता था। उनने कहा कि यदि तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे कि तो मैं आमरण अनशन करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये कोई नई बात थोड़ी थी, ये तो हमारे घर में रोजाना होता है। ये जो उपवास वाली पद्धति है अपनी बात मनवाने की, ये हमारी पुरानी पद्धति है। हर हर बहू जब नाराज हो जाती थी तो खाना छोड़ देती थी, तो सास ससुर सब ठिकाने आ जाते थे और मना मनु के बहू को खाना खिलाते थे और उसकी बात मान लेते थे कि नहीं। छोटा बच्चा होता था तो वो भी खाना छोड़ देता था है? बुजुर्ग माँ बाप होते थे बेनाराज वाले, वो भी एक टाइम खाना छोड़ देते थे, क्यों? लेकिन वो दो टाइम पे नहीं होता था कभी, कैलाशी ऐसा नहीं होता था कि दो दिन पिताजी बैठे रहे भूखे फिर तीसरे दिन कोई ने सोची क्या मैंने हम मनाए, ऐसा नहीं होता था। मैंने वो हमारा प्रोग्राम जो बहुत पुराना था भारतीय संस्कृति का, वो एक ही दिन में निपट जाता था, वो कुछ घंटों में ही निपट जाता था। गांधी जी ने वो कमाल सारे देश में कर दिखाया, सारे देश वालों से कहा कि तुम आपस में लड़ना बंद नहीं करोगे, कौन हिंदू मुसलमान, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आ गए दोनों हाथ जोड़ के कहने, महाराज हम नहीं लड़ते हैं, आप तो खाना खाओ। शांति की उनने क्या किया बोलिए। और हमारे प्रधानमंत्री किसी को यहां पर ये नहीं करने दिया जाएगा, हिंसा नहीं करने दी जाएगी, कि दूसरे के विरुद्ध ये नहीं करने दिया जाएगा, परमानेंट ऑर्डर है, गोली से उड़ा दो, इसे कर दो, ये कर दो, ये कर दो। हम तो ऐसी व्यवस्था करते हैं, हम तो व्यवस्था बिगाड़ने की व्यवस्था करते हैं, क्यों बिगड़े नहीं तो फिर हम व्यवस्था का ही जाए। तो कहते हमारे जो भगवान हैं विश्व में सबकी बात मैं आपसे कहता हूं, एक की बात नहीं, हिंदुओं के भगवान राम जो भी नाम देना हो आपको, वो सारा काम वो करते हैं, राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मुसलमानों में खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ईसाइयों में गॉड की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब हमारे भगवान की मर्जी ही नहीं होती, क्योंकि मर्जी को तो वे मिथ्या तो कहते हैं, मर्जी को तो वे इच्छा कहते हैं, इच्छा तो बंध का कारण है। क्यों मेरी मर्जी से दुनिया चले ऐसा उनको विकल्प ही नहीं है, है? मर्जी के त्याग का नाम भगवान है। वो कहते सारा जगत इतना बढ़िया चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, कि जी अव्यवस्था होती है कि कोई कहीं अव्यवस्था नहीं है, देव व्यवस्था के अंतर्गत ही अव्यवस्था है। उसके लिए मेरा एक ही प्रश्न होता है सीधा सच्चा कि ये जो हो रहा है, जैसे आप ऐसे विद्यार्थी बैठे ना, सब व्यवस्थित ढंग से बैठे इस क्लास के आगे पीछे, ये नहीं करता कोई विकल्प, तो भी आकर इस हॉल में ऐसी तरह की विचार है ये लगी है तो ऐसे ही बैठने वाले थे, और कौन कहां बैठेगा, भगवान महावीर से प्रमोशन में कोई पूछे तो वे बता सकते थे कि नहीं, शांतिलाल जी आप कहां बैठेंगे, ये भगवान महावीर को पता था कि नहीं था, तो आप अपनी मर्जी से बैठे हो, तो आपको किसी ने जबरदस्ती बैठाया है, ये स्पीकर अपना गला खराब करने वाले, ये व्यवस्था उसकी व्यवस्था के अनुसार आप बैठे हो, बिल्कुल नहीं। वे कहते हैं कि हे भगवान, भगवान बनने जैसा महान कार्य, इससे बड़ा काम तो दुनिया में कोई है नहीं ना, के आत्मा स्वयं भगवान बन जाए, स्वभाव से तो भगवान है ही, अरे स्वभाव से भगवान है, और स्वभाव से ही भगवान बनने की शक्ति इसमें है, भगवान बनने की शक्ति का स्वभाव भी इसमें है, और वो कैसे बनेगा वो भी इसके स्वभाव में ही पड़ा है। ये बट का इतना सा बीज है ना, उस बीज के अंदर कैसे किस विधि से वो बट का वृक्ष उगेगा, और वो कितना बढ़ेगा, और कितने साल तक जिंदा रहेगा, ये सब उसमें लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है माने नक्की है कि नहीं है, बोलो कि भगवान से पूछने की जरूरत है महादेव जी, भगवान तुम बता दे, अरे बच्चे बच्चे से पूछ लोगे, इतना सा छोटा ये बीज है, तो जहां हम इसे उगाना चाहते हैं, जहां डालो तो उसके चारों तरफ 25-25 गज तक कोई दूसरी चीज मत लगाना, क्योंकि वो उगेगी ही नहीं, उसको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं, यही सब कुछ खा जाएगी वहां की जो पैदा होने के लिए और बढ़ने के लिए लग गई है, एक एक पेड़, और इतना फलेगा फूलेगा क्या कि 1000 वर्ष तक ये बराबर रहेगा, अपन नहीं जानते हैं, और एक गेहूं का दाना उससे तो बड़ा होता है ना, मेरे ख्याल से बट के बीज में और गेहूं के दाने, एक गेहूं के दाने में 5-7 बट के बीज होंगे, लेकिन ये 100 दिन में खत्म हो जाएगा, उसमें कितने कितने बीज लगेंगे उस बट में, क्या अगिने उन्हें कोई गिन नहीं सकता, गिन नहीं पाया आज तक, अनंत भगवान ने जान लिया हूं केवल ज्ञान में तो अलग बात है, इतने बीज लगेंगे और एक एक में इतने इतने बट बनने की शक्ति होगी, पर इस गेहूं के दाने में कि 5-7 बाली लगेंगी, एक एक बाली में 10-10-20-20 दाने होंगे, तो बहुत से बहुत 50 दाने होंगे बस इसमें, इससे ज्यादा नहीं होंगी, है ना कि नहीं। अब हमने पैदा किया, बड़ किसने पैदा किया और तूने गेहूं पैदा किया, अरे वो सब चीज स्वयं से होती है, वो तो कहते हैं वो आत्मा भगवान भी स्वयं से ही बनता है, वो स्वयंभू है, उसका कोई कर्ता नहीं है, उसका कोई कर्म नहीं है, उसे कोई दूसरे साधनों की जरूरत नहीं है, वो किसके लिए भगवान बना। आपने ऐसा कहते हुए बहुत लोगों को सुना होगा कि भगवान महावीर ने, बहुत हिंसा हो रही थी जगत में तो उस हिंसा को मेटने के लिए दीक्षा ली, तो उनने हिंसा को मेटने के लिए दीक्षा ली, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आओ साओ कटारिया जी आए हैं, भगवान महावीर ने दीक्षा ली कायगत जगत से हिंसा रोकने के लिए। तो अशोक जी मैं आपसे पूछता हूं कि उनको जाकर के तत्काल जहां वो यज्ञ हो रहे थे ना, पशुओं को होमा जा रहा था, वहां जाकर तत्काल उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए था ना, लेकिन वे तो आत्मा के ध्यान में बैठ गए। वो लगातार 12 बरस तक, 12 बरस में तो कितने पशु कट गए होंगे, कितनी हिंसा हो गई होगी। किसी अहिंसक को यदि किसी के बचाने की सामर्थ्य है तो वो बचाने में इतनी देर लगाएगा। इससे ये बात सिद्ध होती है कि वो किसी दूसरे को बचाने के लिए दीक्षा नहीं ली थी, उनने आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा ली थी। अथवा इससे भी आगे कहो तो उनका ये राग जगत से हट गया था, घट गया था। उनकी वो सहज वृत्ति थी जो उनके अंदर से प्रकट हुई थी, और उस वृत्ति में से वो अनंत ज्ञान, अनंत सर्वज्ञता और केवल ज्ञान निकला था, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। आपने जैनियों में बहुत कम सुना होगा ये स्वयंभू शब्द, हिंदू धर्म में बहुत चलता है, शंभो शंभो, शंकर भगवान को शंभू कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि वो जो कुछ बने हैं वो स्वयं से बने हैं, किसी के सहयोग से नहीं बने हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहते हैं। जैन दर्शन में भी कहते ये आत्मा में ऐसी ताकत है कि स्वभाव से तो भगवान है ही, और ये चाहे तो अपने आप ये पर्याय में भी प्रकट रूप से भगवान बन सकता है। लेकिन वैसा भगवान नहीं कि जो किसी को करे, ऐसा भगवान नहीं जो किसी को मारे, ऐसा भगवान नहीं जो किसी को बचाए, ऐसा भगवान नहीं किसी की रक्षा करे, ऐसा भगवान नहीं जो किसी को बनाए, दुनिया भर के काम जिसके माथे पर हो, ऐसा भगवान नहीं। सहज ज्ञाता दृष्टा, सारे जगत में देखने जानने वाला कि जो जगत में क्या होने वाला है, क्योंकि सब पदार्थ में, सब पदार्थ स्वयं से भगवान हैं और उनमें विकसित होकर बड़ा बनने की शक्ति है, किसी को जरूरत नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि बड़ का एक बीज है, उसे बनकर बड़ बनने के लिए तुम्हारे क्या सहयोग की जरूरत है? लाखों बड़ जितने ये जंगल में लगे हैं, उगे हैं, उन्हें किन किन ने बोया है, किन किन ने सींचा है, किन किन ने उनकी सुरक्षा की है, वे अपने आप ही हुए ना। बस दो चार थोड़ा हमने कर लिया अपने स्वार्थ से, एक खेत में लगाई, सब्जी लगाई, अनाज बोया और उसके करता धरता हम बन गए। लेकिन वैसे ही चीजें लाखों जंगल में ऑटोमेटिक तरीके से पैदा हो रही कि नहीं हो रही? वहां तक ये लिखा है श्री कृष्ण भगवान के संदर्भ में कि जन्म समय नहीं मंगल जाके और मरण समय नहीं रोवन हारा। जब जन्म हुआ तो जेल में हुआ। एक सहरिया के यहां भी बाल बच्चा होता है तो वो अपने घर की ताली उठाकर और ऐसी ऐसी पीट लेता है, लेकिन उनके जब जन्म हुआ तो कोई ताली बजाने वाला भी नहीं था। जन्म समय नहीं मंगल जाके और मरण समय नहीं रोवन हारा, और बीच में चक्रवर्ती सम्राट बन गए। बीच की कहानी कितनी लंबी चौड़ी है उसको कहने का भी अपने आप समय नहीं है, लेकिन जन्म से लेकर मरण तक मुझे कभी कभी बहुत विचार आता है कटारिया जी कि जब ये मालूम था कंस को और सबको मालूम था, देवकी को मालूम था कि ये मेरे बच्चे से ये कंस की मौत होगी, तो उनने क्या उपाय किया? दोनों को जेल में डाल दिया है, इनके बाल बच्चे ही नहीं होंगे। और फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे मार डाला, दूसरा पैदा हुआ उसे मार डाला, तीसरा पैदा हुआ, 8 पैदा हुए और 8 को मार डाला, और 9वें पैदा हुए श्री कृष्ण, जिस लड़की उनसे मरना था उसे नहीं मार पाए। अब मैं एक गजब की बात यह कहता हूं कि भी व्यवस्थापक कितने होशियार थे, मेरे जैसा आदमी कोई उनके पास नहीं था। उन्होंने जेल में रखा तो एक कमरे में दोनों को रखा। क्यों इनके बच्चा पैदा नहीं हो, इसका उपाय एक कमरे में रखना था, क्योंकि मुझे मारना है। लेकिन तुम मारने की क्या जरूरत थी, अलग अलग कमरों में कैद कर देते तो बच्चे पैदा ही नहीं। इतनी बात बताने वाला कोई नहीं था। वो तो जाने दो, वो तो बेवकूफ था ही कौन। कंस को बेवकूफ कहने में कोई दिक्कत नहीं है हिंदुस्तान में। अब मैं जरा विचार करता हूं, किशन जी के पिताजी जो बसदेव जी हैं, वो अपने यहां भी बहुत महान हैं, कामदेव हैं। तो वसुदेव जी की ये समझ में नहीं आई कि ये कंस ने जेल में डाला है, मेरे पहले बच्चे को मार डाला, दूसरे को मार डाला, तीसरे को मार डाला। देव जी की समझ में नहीं आई कि भाई पैदा तो पैदा किए जा रहे हैं कि तो मार डालेगा, पैदा ही क्यों किए उनने, उनने कौन सी समझदारी का काम किया। जेल में पड़े थे तो वहां उन्हें कहां भोग की बात सोचने चाहिए थी, तो आत्मा का ध्यान क्यों नहीं करते थे, संयम से नहीं रह सकते थे, कोई साधन नहीं थे यदि फैमिली प्लानिंग के, तो संयम तो था, और जैसी परिस्थितियों में वे थे वैसी परिस्थितियों में तो संयम से रहना ही चाहिए थी। पर वे मारे जा रहा है और वे पैदा किए जा रहे हैं उसके मारने के लिए, ये कहां का विवेक है। लेकिन हम नहीं सोच सकते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई है, ये तो शास्त्र की बात है। अभी झगड़ा भी हो जाए, यदि इसको ज्यादा जोर से बात को उठाई जाए तो सारे देश में मारपीट शुरू हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, अपना जीवन खतरे में पड़ जाए। विचार करें हम गंभीरता से, लेकिन एक साधारण सी बात थी कि वो आखिरकार अंत में यही कहेंगे उसको ऐसा ही होना था, है ना। तो श्री कृष्ण को चुरा करके लेके गए और एक ग्वाले के यहां उन्हें पले पोसे। एक जो चक्रवर्ती बनने वाला है, जैन धर्म के हिसाब से भी अर्धचक्री हैं, नारायण है, आप जानते कि नहीं जानते, नारायण नियम से अर्धचक्रवर्ती होता है। जिसे चक्रवर्ती बनना था उसका बचपन कैसे बीता, कहां बीता, एक ग्वाले के घर में। हम चाहे जितनी बड़ी बातें कर लें और उन ग्वाले को भी बहुत महान बना लें, होते भी हैं, लेकिन वो हमारी सामाजिक व्यवस्था में वो कहां बैठते थे। जो गाय भैंस चराए वो सबसे ज्यादा स्थूल बुद्धि माना जाता है, उसके घर में उनका पालन पोषण हुआ है? और वो फिर अपने पुरुषार्थ से, किसने उन्हें सहयोग किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अर्ध चक्रवर्ती सम्राट बने, जरासंध को मारा, कंस को मारा, जो भी सब हुआ, जितनी स्थिति में पहुंचे। और जब नेमिनाथ भगवान ने ये बताया कि द्वारा वर्ष बाद द्वारका नगरी जल जाएगी, है ना, तब कल्पना करो, दो मिनट एक कल्पना करो आप। मुझे मालूम है कटारिया जी को जल्दी जाना है, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा।
पौने ग्यारह।
तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, जरा गंभीरता से विचार करें कि जब ऐसी सभा बैठी होगी जिसमें सारी जनता द्वारका की थी, द्वारका की थी जनता, कोई बाहर का नहीं था, और उनने कहा होगा कि 12 बरस बाद शराब के निमित्त से, क्रोध के निमित्त से द्वारका नगरी जल जाएगी और उसमें कोई नहीं बचेगा श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा, सब समाप्त हो जाएंगे, सारे भस्म हो जाएंगे। तब द्वारका नगरी में वहां उस प्रवचन में बैठे हुए लोगों को कैसा लगा होगा, क्योंकि वो सबकी दुकानें द्वारका में ही थी, सब उनके सारे रिश्तेदार भी द्वारका ही में थे, कोई बाहर नहीं था, माने सब मर जाएंगे, जल जाएंगे। क्या सोचा होगा, ऐसे लोग भी बैठे थे कि उन्हें ये सुनकर वैराग हो गया और उनने दीक्षा ले ली, वे भी साधु बन गए और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। ऐसे लोग भी बैठे थे कि इनने कह दें कि द्वारका जल जाएगी, देखें कौन जलाता है, वो दीपा है जलाएगा। अरे तुम समझते क्या, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, दीपायन रहेगा तब तो जलाएगा, और शराब, शराब की एक बूंद नहीं रहेगी द्वारका में, शराब बंदी लागू कर दी कड़काई से। अब देखें मैंने पक्का इंतजाम कर लिया है, अब द्वारका कैसे जलती है। ऐसी विचार वाले भी बैठे थे, कौन, जिन्हें जहां जाना था वैसे उनके विचार थे, जिन्हें मोक्ष जाना था उन्हें दीक्षा लेने का भाव आया, उनको उस घटना को रोकने का भाव आया। अच्छा भाव था ना, यदि हमारे ऐसी व्यवस्था है कि जयपुर में ऐसा भयंकर दंगा होने वाला है, आतंकवादी आ गए हैं, ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, तो अपन व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उन्होंने अच्छा काम किया था ना। अरे आदमी सोचता है कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं की थी, हम यही तो करेंगे ना, हम मरिया से बढ़िया व्यवस्था करने की सोचेंगे कि दीक्षा लेके चले जाएंगे। उस वक्त तो दीक्षा लेने वाले ना समझ में आए होंगे, कहीं काम मौके पर काम करना चाहिए था। बगैर कह दिया कि द्वारका जल जाएगी, देखें कौन जलाता है। जैसे नेमिनाथ चैलेंज दे रहे होंगे कि मैं जलाऊंगा, अरे भैया भी कहते मैं थोड़ी जलाऊंगा, मुझे तो 12 वर्ष बाद जलती द्वारका दिखाई दे रही है, मैं तो सिर्फ जान रहा हूं और मेरी वाणी में निकल रहा है। जैनियों के भगवान तो ज्ञाता हैं और बहुत से बहुत वक्ता हैं, समुद्र में बैठ कर बोलते हैं, आगे इसके आगे तो कुछ करते ही नहीं है ना, करता धरता है ही नहीं, लेकिन जगत का जो होना है वो सब निश्चित है, सब धर्म मानते हैं। इस सिद्धांत को लेकर यदि हम सारे देश के पास भी जाएं तो देश का एक भी आदमी नहीं होगा जो इसके विरोध में जा सकता है, और उनके अंदर में शुद्धता और सात्विकता और सदाचार आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए हमको भगवान महावीर के जीवन को, उनके सिद्धांतों को, उनने क्या कहा उसे गहराई से समझना चाहिए और अपने जीवन में उतार कर सुखी होना चाहिए।
तत्व वेदता का सर्वप्रथम मेरे भाई साहब का प्रवचन सुना संक्षिप्त।